ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारू अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 49 पृष्ठ संख्या 542। मेरे पीछे बोलिए। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति। शब्दार्थ असक्त बुद्धि ही आसक्ति रहित बुद्धि वाला सर्वत्र सभी जगह जित आत्मा मन के ऊपर संयम रखने वाला विगत स्पृहा भौतिक इच्छाओं से रहित नैष्कर्म सिद्धि निष्कर्म की सिद्धि परमा परम संन्यासेन संन्यास के द्वारा अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस लोग समझेंगे भगवान कह रहे हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा सब ओर से जिसकी बुद्धि अनासक्त है और जित आत्मा मन के ऊपर संयम रखता है विगत स्पृहा भौतिक इच्छाओं से रहित है निष्कर्म सिद्धि परमा तो सबसे ऊंची निष्कर्म की सिद्धि है कर्म बंधन से छुटकारा है संन्यास अधिगच्छति संन्यास के द्वारा प्राप्त करता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं शिला प्रभुपाद की। सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद ना लेने का आदि हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना सन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगारूढ़ यह योग की सिद्धावस्था कहलाती है। जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है यह स्वात्म दत्त रेव स्यात् जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो इस श्लोक से भगवान जो है अब संन्यास का विषय शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया था, क्या संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्, कि संन्यास का तत्व मैं जानना चाहता हूँ। त्यागस्य च ऋषिकेश, और हे ऋषिकेश त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ। पृथक केश अनुशोधन, पृथक अलग से त्याग का तत्व और संन्यास का तत्व जानना चाहता हूँ। तो इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने क्या जानना चाहा है, त्याग का तत्व तो अलग से और संन्यास का तत्व तो अलग से, है ना। तो भगवान ने त्याग का तत्व तो विस्तार से बताया 48 श्लोक तक। पिछला श्लोक था 48वां, 48वें श्लोक तक भगवान ने त्याग का तत्व तो बतलाया और संन्यास का तत्व तो अब भगवान संक्षेप में बता रहे हैं 7 श्लोकों में। ये 49वें श्लोक है, यहां से शुरू करते हैं भगवान संन्यास का तत्व तो, और 55वें श्लोक तक 7 श्लोकों में समाप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि संन्यास की विधि बहुत कठिन है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि संन्यास लिए बिना भी, तात्पर्य में प्रबंध लिखा है कि भाई बिना संन्यास ग्रहण किए ही ये सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कौन? जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में होता है, है? तो हम आज एक विशेष कथा सुनेंगे एक ऐसे राजा की जो कि गृहस्थ है लेकिन सबसे बड़ा सन्यासी है। वो राजा भी, उसका पुत्र भी, उसकी पत्नी भी, ये सब बड़े सन्यासी, महान सन्यासी हैं। है? अर्जुन और कृष्ण दोनों मिलकर के परीक्षा लेते हैं। है? जैसे भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण का संवाद हो रहा है तो इसमें अर्जुन को जो है ना कृष्ण प्रैक्टिकल दिखलाते हैं कि कैसा सन्यासी होता है एक राजा। तो ये भगवत गीता से अलग नहीं है, जैमिनी महाभारत में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि देखो ये जो राजा मयूरध्वज है ये कितना बड़ा सन्यासी है, है ना। कथा इस प्रकार से चलती है कि युधिष्ठिर महाराज का अश्वमेध यज्ञ हो रहा है और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे अर्जुन है और अर्जुन के साथ कृष्ण भी हैं। तो राजा मयूरध्वज के राज्य में जब घोड़ा जाता है तो उनका पुत्र ताम्रध्वज जो है युद्ध करता है और अर्जुन कृष्ण दोनों को परास्त कर देता है। कैसे? अपनी भक्ति के प्रभाव से अपनी भक्ति के प्रभाव से अर्जुन कृष्ण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। उसने बड़ा भयानक युद्ध किया अर्जुन की सेना के साथ। और फिर जो है कथा तो फिर और भी आगे है, लेकिन मैं अब ये बताना चाहता हूं। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों मिलकर के उस राजा की परीक्षा लेते हैं। तो होता क्या है कि भगवान कृष्ण क्या बनते हैं, वृद्ध ब्राह्मण, एक वृद्ध ब्राह्मण बन गए और अर्जुन को बनाया अपना शिष्य। दोनों ब्राह्मण हैं और उस राजा मयूरध्वज के जो है सभा में जाते हैं। तो राजा मयूरध्वज यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके पत्नी सहित बैठे हुए थे। दोनों घोड़े अश्वमेध यज्ञ के जो दोनों घोड़े थे वो पास में ही खड़े हुए थे, क्योंकि राजा मयूरध्वज भी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उनका भी घोड़ा था और अर्जुन का जो घोड़ा था अश्वमेध यज्ञ का, दोनों पास में खड़े थे। उस समय ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण ने उनके निकट जाकर प्रणाम करने से पहले ही स्वस्ति वाचन किया, नहीं आशीर्वाद दिया राजा को। कृष्ण ब्राह्मण बने हैं। दीक्षितम जाए आयुक्तम तुरंग द्वय संयुतम तम बबी तदा विप्रह स्वस्ति प्रथमम वचः। अब ब्राह्मण ने कहा, जानते कौन ब्राह्मण? हाँ, भगवान है ब्राह्मण के रूप में। कहते हैं राजन आपका कल्याण हो, आपको विदित होना चाहिए कि मैं एक ब्राह्मण हूं। क्या समझे? मैं एक ब्राह्मण हूं और यज्ञ के लिए बनवाए गए आपके इस मंडप में शिष्य के सहित आया हूं, मेरा शिष्य। कौन है? अर्जुन है, ये मेरा शिष्य है, आप मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए। स्वस्ति थे न पे शार्दूले विद्यमान संगतम द्विजम शिष्यम वत्स संप्राप्तम मंडपे अंगीकारिते। अब मयूर ध्वज, देखो एक सन्यासी का क्या लक्षण है, एक गृहस्थ राजा वो सन्यासी है, मतलब अंदर से वो बहुत बड़ा सन्यासी है, ऊपर से तो गृहस्थ है। तो क्या कहता है कि हे महाराज, मैं यहां जब तक शिष्य सहित आपको प्रणाम करने के लिए उठ ही रहा था, तब तक आपने स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दे दिया। अभी तो मैंने आपको प्रणाम ही नहीं किया और आपने आशीर्वाद दे दिया, ये क्या कारण है? समुत्थितोस्मि अहम् विप्रम् नमस्कर्तुम् सशिष्यकम् भवन्तम् यावत् देवात्रय तावत् स्वस्ति प्रभासते। हे महाराज, यदि कोई ब्राह्मण प्रणाम किए बिना ही किसी मनुष्य को आशीर्वाद दे देता है तो वह आशीर्वाद उसके लिए साप जैसा हो जाता है। मैंने प्रणाम नहीं किया, आपने आशीर्वाद दिया, तो ये तो आशीर्वाद तो साप जैसा है, फिर उसे पृथक साप देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए आपने ये उचित नहीं किया कि मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, ये उचित नहीं है। नमस्कारम बिना विप्र स्वस्ति ब्रूहते जनाय शापेन किम ततः कार्यम तस्मान युक्तम नते कृतम। तो इतना कहने के पश्चात राजा मयूरध्वज भगवान वासुदेव के आगे दंड की भांति पड़ गए, ब्राह्मण समझ करके। राजा जो है ब्राह्मण का कितना सम्मान करता है। तब अगाध बुद्धि वाले श्री कृष्ण उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। पादंडवत पश्चात वासुदेवस्य चांगतः समुत्थापित एवासो कृष्णेनामित बुद्धिनम। अब राजा ने ब्राह्मण के वेश में छिपे हुए श्री हरि से पूछा, हे महाराज, मेरे यज्ञ मंडप में शिष्य सहित आप पूज्य चरण का किस लिए सदा गमन हुआ है? आपने तो मुझ पर महान कृपा की है, आपके दर्शन से मैं धन हो गया। अब आप आज्ञा दीजिए कि मैं इस समय आपका कौन सा प्रिय कार्य संपन्न करूं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई प्रिय वस्तु नहीं है जिसे मैं आपको दे ना सकूं। अप्रच्छन्न पतिर भूयो हरिम प्रच्छन्न भूसुरम कस्मात् प्राप्तम पूज्य पादयम तस्येर मम मंडपम किम प्रियम भवताम कार्यम प्रब्रंतो मयाधुना धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि नादेयम ममे विद्यते। अब भगवान कहते हैं ब्राह्मण के रूप में, राजन अपने किसी कार्य को निवेदन करने के समय ब्राह्मण प्रणाम किए बिना ही राजा के लिए आशीर्वाद का उच्चारण करे। अगर ब्राह्मण अपने किसी काम से आता है, अपना काम कराने के लिए आता है, तो बिना प्रणाम किए ही वो आशीर्वाद दे, ये विधि है, है ना? तो मैं कुछ काम से आया हूं, इसलिए मैंने आशीर्वाद आपको पहले दे दिया ना? आपने प्रणाम करने के पहले ही मैंने आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि मुझे कुछ काम है आपसे, ये उचित है। और दूसरे वर्ण वाले लोगों को चाहिए कि जब वे किसी काम से राजा के पास आए तो उस समय स्वयं ही पहले राजा को प्रणाम करें। नमस्कारम बिना विप्र स्वस्ति वाचो नराधिपम विज्ञप्ति काले त्वपर नमस्कार यो महीपति। तो राजा ने कहा, हे महाराज, अब आप महानुभाव निस्संक होकर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने धन और जीवन को भी न्योछावर करके आपके संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने की चेष्टा करूंगा। आदेशो दीयताम मह्यम आर्यैरद्याविशंकयाम कुर्वेहम सकलम कार्यम जीवितेन धनेन च। तब ब्राह्मण बोले, कौन? कृष्ण महाराज बोले, राजन मैं जिस कार्य के लिए आपके पास आया हूं उसका वर्णन करता हूं, सुनिए। मैं अपने पुत्र का विवाह करने के लिए मैं अपने पुत्र का विवाह करने के लिए धर्मपुर से आया हुआ हूं, और मार्ग में मैंने सुना कि आपके इस नगर में एक कृष्ण शर्मा नामक ब्राह्मण रहते हैं। देखा कैसी कहानी बनाई, धर्मपुर से आया हूं और कृष्ण शर्मा नाम के आपके नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं, वे आपके पुरोहित हैं, उनके एक कन्या है, तो वे माननीयों का आदर करने वाले हैं, अतः अपनी कन्या मेरे पुत्र के लिए दे देंगे। ऐसा विचार करके मैं पुत्र को साथ लेकर आपके नगर की ओर आ रहा था। तब तक मार्ग में भयंकर वन में पहुंचने पर वहां क्रोध में भरा हुआ एक सिंह मिला, समझे। उसने मेरे देखते देखते मेरे तरुण पुत्र को पकड़ लिया। तब मैं अपने पुत्र को उससे मुक्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। मेरे पुत्र को पकड़ लिया उसने। सुन राजन प्रवक्ष्यामि यदर्थम अहम आगताम रम्यां धर्म पुरात कर्तुम विवाहम स्वसुतस्य हि कृष्ण शर्मा द्विजस्तित्रयम् कन्या युक्ता पुरोहिताम विद्यते मानशीलोयम् मत्वा दाशति कन्यकाम् आयामि पुत्र सहितो यावत्ते नगरं प्रति तावन् मार्गे वने घोरे सिंहा कोप समन्विताम् जग्राहे पुत्रं तरुणं पश्यतो मम पार्थिव ततो मया सपुत्रस्य मोक्षणे चोद्यमान कृतः। मैंने उस अवसर पर शीघ्र ही क्या किया, नरसिंह भगवान का स्मरण किया। परंतु मेरे स्मरण करने पर भी जब नरसिंह भगवान नहीं आए तब मुझे बड़ा दुख हुआ। तब वो सिंह मुझे दुखिया से मनुष्य की बाणी में हंसता हुआ सा कहने लगा। वो हंस रहा, शेर हंस रहा है, नरसिंह भगवान नहीं आ रहे बचाने के लिए। उस समय मैं अपने नाखूनों और भयंकर दाढ़ों से मेरे पुत्र के शरीर को पीड़ित करके अपनी पूंछ से मुझे भी डरा रहा था। इसमें तो नृसिंहस्तत्रासु नागता स्मरणान् मम दुखितं मां सवे सिंहा प्रद्युमा च हसन्यवे मनुष्यवा पीड़यन् मे पुत्रगात्रं ददान खेम नस्त्राभिर्भीषणाभिश्च तर्जयन् लांगलेन माम। उस शेर ने कहा, महाराज अब तुम अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हो, क्योंकि जब काल स्वरूप मैंने इसे पकड़ लिया तब इसका उद्धार करने के लिए दूसरा कोई समर्थ नहीं हो सकता। वृताश्रमम हि प्रेन्द्र पुत्रं प्रति करिष्यसि मया ग्रस्तं हि कालेन नान्यस्तारयितुं क्षमः। अब तुम सोच विचार ना करो, क्या ना करो, सोच विचार ना करो, इस शिष्य के साथ अपने घर को लौट जाओ। अब तुम्हारा पुत्र तो गया, अब तुम क्या करो, अपने शिष्य के साथ अपने घर लौट जाओ, क्योंकि हिंसक जीवों के सामने अधिक काल तक ठहरना सुखदायक नहीं होता, ठीक है ना। आप दोनों का भी ठहरना ज्यादा आनंद वाली बात नहीं होगी। गच्छ शिष्येण सहिता स्वगृहं मा विचारे हिंसाणां पुरत्ववासो न सुखायोपजायते। हे महाराज, वेदों का कथन है कि पुत्रहीन को उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती, यह भी बात सही है। तुम्हारा पुत्र मर जाएगा तो तुमको उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होगी, अतः अब तुम घर जाकर दूसरे ऐसे पुत्र को उत्पन्न करो जो तुम्हें उत्तम लोक प्रदान कर सके, यह भी आपको करना है, ठीक है। अन्यम जनय पुत्रम तुम यस्ते लोक प्रदो भवेत् अपुत्रस्य परो लोको नास्ति वेदेन भाषितम्। तब मैंने कहा, किसने, ब्राह्मण देवता ने कहा, मैंने कहा सिंह तुम मेरे पुत्र को छोड़ दो और उसके बदले में मेरा भक्षण कर लो, क्योंकि यही मुझे उत्तम लोक प्रदान करने वाला है। अब मैं वृद्ध हो चला हूं, मेरी आयु भी थोड़ी ही शेष होगी, ऐसी दशा में पुत्रहीन हो जाने पर तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। माम भक्षयित्वा सिंहतम मुंज पुत्रम मिलोगतम वृद्धस्याल्पायुषो व्यर्थम जीवितम पुत्र वर्जितम। तो सिंह बोला, सिंह क्या बोला, सुनिए ध्यान से, महाराज हम लोग कहीं भी उसी जीव का वध करते हैं जो मृत्यु से ग्रस्त हो, क्या समझे, क्योंकि सर्प हिंसक प्राणी और जल आदि सभी वस्तुएं केवल मृत्यु की सहायता करने वाले होते हैं, ठीक है ना, तो आपको नहीं खाऊंगा मैं। वयम तु मृत्युना ग्रस्तम घातयामो जनम क्वचिन सहाय कार का सर्पे सर्प हिंस्र जलादिका। तुम्हारी आयु अभी बहुत है, क्या समझे, और तुम्हारे पुत्र की आयु समाप्त हो चुकी है, इसलिए तुम मेरे कहने से क्या करो, घर लौट जाओ। अहो प्राण देने के लिए उतारू होकर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम प्राण क्यों देना चाहते हो, क्या कर रहे हो तुम? आयुष्यम ही बहुलम गतायुष्तम पुत्र कहा तस्मात गच्छे मया ज्ञप्ता किमिदं क्रियते त्वयाम। तो फिर मैंने कहा, मतलब वही भगवान बताया ना, तो फिर मैंने कहा सिंह तुम दान तपस्या अथवा किस उपाय से मेरे पुत्र को छोड़ सकते हो बताओ, ये मुझे बताओ। राजा मयूर ध्वज उस समय सिंह ने जो कुछ कहा उसके लिए क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ? शेर ने जो कहा तो मैं आपसे क्या बता सकता हूँ, क्योंकि फिर अब आपके ही आपकी फिर समस्या आ जाएगी। तपसा वा प्रमुंचसी तदा प्रोक्तम केसरिणा तत्ता किम प्रार्थते न। मयूर ध्वज ने कहा महाराज मेरे राज्य में तो छोटा सा भी सिंह नहीं रहता, अतः भगवान नरसिंह के अलावा दूसरा कौन सिंह आपके पुत्र को पकड़ सकता है? नरसिंह भगवान ही होंगे और कौन होगा? विपेन्द्र माम के राष्ट्रीय क्षुद्र सिंहो नवेदते नरसिंहम बिना कोण्य तव पुत्रम प्रधारेन। तो फिर ब्राह्मण ने कहा महाराज उस सिंह ने आपसे जो कुछ प्रार्थना की है उसे आपको अवश्य देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे ही याचना कर रहा है, मेरे पुत्र को तभी छोड़ेगा, क्या समझे? सिंह ने प्रार्थना किंचन तत्वयम सत्यम भविष्यति हितंदेयम यत्वाम याचति केशरीम। तो राजा ने पूछा महाराज उस सिंह ने मुझसे किस वस्तु के लिए याचना की है उसे शीघ्र ही बताइए, मैं वह वस्तु आपको दूंगा, क्योंकि मेरा कथन असत्य नहीं हो सकता। किम प्रार्थितम केतरिणा मत्तो दास्यामि ते नघे तंद्रोहि शीघ्रम विप्रेन्द्र नानृतम मम भासितम। देखो ये है सन्यासी, कौन? राजा मयूरध्वज। कहता है क्या चीज नहीं दे सकता हूं आपकी सेवा में, आप मांगो मुझसे, मतलब कुछ भी चीज ऐसी नहीं जो ना दो। सन्यासी है, यद्यपि राजा है, लगता है कि भाई तो बड़ा भोगी है, देखो कितना बड़ा सन्यासी है, कहता है असत्य नहीं हो सकता है। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं जिस वस्तु के लिए आपसे याचना करना चाहता हूं उसे आप कैसे दे सकेंगे? मेरा पुत्रहीन हो जाना मेरे लिए बड़ी भयंकर बात है, भला इसके निवारण के लिए कौन अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्ग करेगा, अपनी जान कौन देगा? प्रदाशति कथम तत्तु मया यत् प्रार्थते किमु अपुत्रत्वं दारुणं हे का प्राणान् दयितान्। यदि आप सिंह द्वारा मांगी हुई वस्तु देने के लिए तैयार हैं तो उस भयानक बात को सुनिए। उस महान मन में सिंह ने मुझसे कहा था कि ब्राह्मण यदि तुम मयूर ध्वज का आधा शरीर ला दो तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूंगा। क्या समझे? आधा शरीर, तुम्हारा शरीर तो तपस्या से जीर्ण और बूढ़ा हो गया है, तुम्हारा शरीर खाके मैं क्या करूंगा? मुझको राजा मयूर ध्वज का आधा शरीर चाहिए, अतः ये मुझे पसंद नहीं है, तुमको खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? सिंह ने प्रार्थितम दाता भवान के क्षण दारुणम तेनो तो हम महारण्य शरीर अर्धम समान मयूर के तो पुत्रम ते तथो मुंचा में भूसुर तो देयम तपसा दग्धम वृद्धम गात्रम न रोचते। उधर मयूर ध्वज का शरीर जानते हो कितना अच्छा है, नाना प्रकार के फलों और दिव्य दूध आदि रसों से परिपुष्ट है, समझे? तो मैं मयूर ध्वज का शरीर खाना चाहूंगा और वह चीरा हुआ शरीर मुझे परम प्रिय लगेगा, चीर करके आधा शरीर लाओ, किसका? मयूर ध्वज का, अतः उसे ही मेरे लिए ला दो। नाना विध फल पुष्टम दिव्य दुग्ध रस वपु मयूर के तोर निर्भिन्नम सुप्रियम ममे दीयताम। जब तक तुम मयूर ध्वज के उस परिपुष्ट शरीर को लेकर नहीं आ जाओगे तब तक मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं खाऊंगा, लेकिन पकड़े हूं मैं तुम्हारे पुत्र को, इंतजार कर रहा हूं, ये मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, तुम्हारे पुत्र को नहीं खाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा भी नहीं जब तक तुम मयूर ध्वज का आधा शरीर नहीं लाओगे। यावत् चनानेर गात्रम तादृतम तावदेव हे पुत्रम न दे भक्षे हम सत्यमे तन्वदामि ते। तो अब भगवान बोल रहे हैं ब्राह्मण के रूप में कि हे मृगराज शेर से कह रहे हैं मृगराज, भला राजा होकर वे दूसरे के लिए अपने सुंदर शरीर को क्यों चिरवाएंगे। अतः मैं उन राजा के पास ऐसी याचना करने नहीं जाऊंगा। किमर्थम स्वशरीरम ही राजा भेष्यति सुंदरम परार्थे नैव गच्छामि मृगाधिपे नराधिपम। तो राजन उस सिंह ने पुनः मुझसे कहा कि महाराज तुम राजा के पास अवश्य जाओ। जैसे इंद्र की याचना करने पर महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां दे दी और सूर्य पुत्र कर्ण ने अपना कवच दे दिया इंद्र को, उसी प्रकार राजा भी ब्राह्मण के निमित्त अपना शरीर प्रदान कर देंगे। ये बात अन्यथा नहीं हो सकती, क्योंकि यशस्वी पुरुषों का अपने शरीर पर कोई विशेष प्रेम नहीं होता है। क्यों? सन्यासी है राजा, राजा बहुत बड़ा सन्यासी है। सिंगे नोक्तम पुनरभि गच्छे ने प्रे निपम्बति तथा दधि चिरस्थिनि कवचम भानुजो यथाम तथा प्रदाशति वपुर विप्रार्थे नाम्यता भवेत् यशस्वी नाम शरीरे स्वे पीतिर्न महति क्वचिन। परब्रह्म परमात्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए क्षत्रियों को ब्राह्मण के कार्य के लिए रणभूमि में अपने शरीर का भी उत्सर्ग कर देना उचित है। तो हे महाराज, अब तुम पुत्रहीन हो रहे हो, अतः राजा के पास जाओ। रण मध्य पातनीयम द्विजार्थे बाहुजैर वपुः तम विप्रसुतहीनोऽसि ततो याहि तदन्तिकम्। महाराज वहां जाकर राजा मयूरध्वज से प्रार्थना करो, वे तुम्हारा शोक दूर कर देंगे, क्योंकि उनके बहुत से पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं और उन्होंने चिरकाल तक राज्य का भी उपभोग कर लिया है, इसे तुम्हारी अवस्था देखकर वे निस्संदेह दया से द्रवित हो जाएंगे। याचक तो सभी प्रकार की वस्तुएं मांगता है, दाता दे अथवा ना दे तो मांगने में क्या नुकसान है, अगर नहीं भी देंगे तो तुम्हें मांगने में क्या नुकसान है। ट्राई करो। तम प्रार्थय मही पालम गत्वा शोके विनाशनम भावो जनितास्तेन पुत्रा राज्यम चिरम कृतम त्वाम वीक्ष कृपया युक्तो भविष्यते न संशयः अर्थिना प्रार्थते सर्वम जनो यच्छुवा नवम। तो इस तरह से भगवान ब्राह्मण के रूप में राजा से कहते हैं कि राजन इस प्रकार वन में उस सिंह ने मुझसे कहा था, उसी की प्रेरणा से पुत्र शोक से आतुर होकर मैं अपने इस शिष्य के साथ आपके घर पर आया हूं। अतः अब आप जिस किसी भी उपाय से मेरे पुत्र को वन में से उस सिंह से छुड़ाकर ला दीजिए। यथम तेने वने प्रोक्तम सिंहे नाम प्रचोदितृहम प्राप्त पुत्र शोका समान। राजन उस समय वह सिंह क्या बोला था कि तुम राजा मयूरध्वज के शरीर का अर्ध भाग लिए बिना मत लौटना, समझे? हाँ, लौट करके नहीं आना बिना उसके, नहीं तो पुत्र तुमको मिलने वाला नहीं, फिर क्या फायदा मेरे पास आने से। यदि उस शरीर को लिए बिना ही वापस आओगे तो मैं तुम्हारे पुत्र को क्या करूंगा, छोड़ नहीं सकता। यो कठोर वचन कहता हुआ मेरी आंखों से उजल हो गया, मेरे पुत्र को लेकर के चला गया वो और बड़े गुस्से में बोल दिया कि वो लेके आओगे तो छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे पुत्र को। अदृष्टा के शरीर जाता कथियं दारुणं वचः शरीरार्धं विना तस्य न गंतव्यं महीपते आगतस्य न ते पुत्रं विना नात्र प्रमोचये। जब उसने ऐसी बात कही, क्या समझे, जब उस शेर ने ऐसी बात कही, तभी मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि दुर्बल लोगों को चाहिए कि वे राजा से अपना दुख निवेदन करके चुप हो जाएं। मैंने अपनी बात बोल दी, अब मैं चुप हो गया, बस मेरा काम पूरा हो गया। हाँ, इति तेन तदा युक्तम इति तेन यदा प्रोक्तम तदा तो मामागतः निवेद्य दुःखं भूपाले स्थातव्यं दुर्बले अर्जने। प्राचीन काल में वीर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को अपने पुरुषार्थ से जिंदा कर दिया था। रामचंद्रेण वीरेण ब्राह्मण से मृता सुतः ब्रह्मचर्य व्रता करहं पुराणीतः सुपौरुषं। हे राजन, मैं अपने पुत्र के जीवन प्राप्ति की कामना वाला हूँ, इसलिए मैं आपको श्री राम के समान ही पराक्रमी और धैर्यशाली समझकर बहुत बड़ी आशा लगाकर आपके पास आया हूँ। निपाशयाहं पुत्रार्थी भवन्तं समुपागतः रामतुल्यं मे तत्त्वेन मया धैर्येण पार्थिवम्। तब राजा ने कहा, महाराज थोड़ी देर ठहरिए, मैं इस यज्ञ मंडप में अपना शरीर आपके अर्पण कर दूंगा। मैंने यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मणों के सामने ये सत्य बात कही है। तिष्ठति विप्रेन्द्र दास्यामी मंडपे स्वं कलेवरम सर्वेषामत्र विप्राणाम् अग्रे साधोदितं मयाम्। ऐसी बात कहकर राजा मयूरध्वज ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया। ये काम तो पूरा किया है, राजा था, अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं गंगा जल से भरी प्रकार स्नान किया। सालग्राम शिलाओं के प्रक्षालित जल से अपने को सींचा, तुलसी दलों से बनी हुई माला गले में धारण कर ली, शरीर को संघ चक्र से अंकित कर लिया। इस प्रकार राजा मयूरध्वज आनंद पूर्वक हंसते हुए सभा मंडप में आए और सभी ब्राह्मणों से कहने लगे। एवं उक्त्वा वचो राजा पुत्रं राजे न्यवेशयन् सुस्नातो जाह्नवी तोये सालग्रामे शिलाजलिं तुलसी दल जाम मालां कंठे कृत्वा हसन्निव संघ चक्रांकितं गात्रं कृत्वा राजा मुदान्वितः सभा मंडपमागत्य सर्वान् विप्रानुवाच सः। अभी राजा कौन से, क्या नाम है राजा का? मयूरध्वज। बोले मेरे यज्ञ मंडप में उपस्थित ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण देवता अपने पुत्र के जीवन की कामना से मेरे पास आए हुए हैं, अतः मैं इन्हें श्री कृष्ण के समान मानकर अपने शरीर का आधा भाग देकर इनका सत्कार करूंगा जिससे ये पुत्रवान हो जाएं। अब आपके सब लोग ये कौतुक देखिए। एनम कृष्णम मित्र रूपम पुत्रार्थम माम समागतम अर्चयामि स्वदेहादर्धाम यथा पुत्र।